राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 1992 प्रातः लगभग 9 बजे वाराणसी में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण।
शराबी कबाबी आदमी काशी में रहने पर मर गया तो फिर साधन भजन के सत्कारियों की आवश्यकता है, वो तो यहीं से कल्याण उसका हुई हो जाए
तो ठीक बात है, यही कल्याण हो जाएगा। ये बात ठीक। परंतु जितने पाप किए हैं उन पापों का फल भोगना पड़ेगा, वो पापों का फल 84 लाख जोनी में और 28 कुंड और कई कुंड नरकों के ऐसे बड़े बड़े उनमें यातना है, वो घोर यातना भोगनी पड़ती है। और काशी में मरने पर यहाँ एक भैरव यातना है, वो भैरव यातना सुनते उन नरकों से भी बहुत ज्यादा भयंकर है, वो भोगनी पड़ती है। पापों का फल भोगना पड़ता है, यहाँ बड़ी भयंकर यातना होती है, वो भोगनी पड़ती है। इतना भोग करके कल्याण हो जाता है, ये बात ठीक है। तो ये काशी का एक विशेष महात्म्य है। एक कवि ने भी कहा है कि जग में चितेक जल जीव जाति अंत समय जमके जबर जोधा खबर लिए करें काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासन की फांसी यमनासन को शासन लिए करें मेरी प्रजा वह के किम पे है काल दंड त्रास सारे हमेशी है सारे शंकर हमेशी है करे सारे की भनक क्या से प्राण के प्राण समय कान में किए करें। तो ये तारक मंत्र देते हैं भगवान जो मर जाता है वो। मैंने यहाँ से सज्जनों से सुना है काशी में कोई मरता है तो यूँ होता है यूँ कान हो जाता है उसका, ये कान ऊपर हो जाता है, कान में भगवान शंकर मंत्र सुनाते तो उससे कल्याण हो जाता है, पर पापों का दंड भोगना पड़ता है और बड़ा भयंकर भोगना पड़ता है। इस वास्ते बिना जब जो भी कल्याण हो जाए ये बात ऐसी नहीं है जैसी सूर समझ रखी है, परंतु कल्याण हो जाता है ये बात, ये काशी का महात्म्य है। मुक्ति दान मई जान ज्ञान खान अगहान कर जाप शंभु भगवान सो काशी से कसम।
राम नाम सिद्ध मंत्र है या किसी गुरु से लेना पड़ता है?
देखो भाई मंत्र तो सिद्ध है और उनसे सिद्धि भी हो जाती है, गुरु से लेने की बात चीज चलती है। वो वास्तव में समर्थ गुरु होते हैं का दिया हुआ मंत्र है वो एक विशेष शक्तिदायक होता है, परंतु होता है गुरु समर्थ होते हैं तब तो। ऐसे मंत्र देने मात्र से वो लाभ नहीं होता जो गुरु कृपा से माना गया है। वास्तव में ये बाण चलाते हैं नहीं सब, तो सबका बाण चलता है, मार भी करती है, पर विष्णु जी ने कहा है अपनी मौत बताई तो शिखंडी वो सामने रखे, परंतु बाण मारे अर्जुन शिखंडी के बाणों से कोई आदि मजबूत हो रही है, बाण लगे तो मर जाए, मच्छर खाते कोई मर जाए तो दूसरे शिखंडी आदि के बाण तो ऐसे होंगे जैसे मच्छर काट देगा फिर ऐसे लग गए। तो योद्धा में जो ताकत होती है उनका बाण होता है विशेष शक्तिशाली। जब बाण लगते हैं तो भीष्म जी कहते हैं अर्जुन से मे बाणा नेमे बाणा शिखंडी ना, अर्जुन से मे बाण, ये बाण अर्जुन के हैं, अर्जुन के बाण में ताकत है, नेमे बाणा शिखंडी ने नहीं ने बाणा शिखंडी ने होता नेमे बाणा मान अर्ध नेमित्यर्थ है, आधे बाण शिखंडी गए अर्जुन सी में बाणा, ये बाण अर्जुन का है। तो ऐसे ताकतवर गुरु होते हैं, महात्मा पुरुष होते हैं, और वो कृपा करके किसी को मंत्र दे देते हैं तो उसमें शक्ति विशेष आ जाती है। बाण तो सभी होते हैं परंतु काम ताकत करती है। तो नाम का महात्मा तो होता है पर गुरुदत्त और ऐसे ही गुरु हो तो उनकी वो शक्ति विशेष ताकत होती है। ऐसे नाम हो गया गुरु का, अब किसी को गुरु बना दिया, किसी को गुरु नाम दे दिया। गुरु प्राय बनने वाले आजकल के जमाने में भेंट पूजा के लिए बनते हैं, शिष्य मंडली बन जाए, पूजा आ जाए, अपना भेंट आ जाए, तो इस तरह से गुरु बनते हैं। वो गुरु वो महिमा नहीं है जो गुरु से मंत्र ली हुई की महिमा है, उसी बात है। मैं तो एक और बात कह दिया करता हूँ,
शरणागति के बाद की बात
क्या कहते हैं,
कहते हैं कि हम तो सर्व पापे भी मोक्षिष्यामि, और जो पाप भोगना ही पड़ता है तो फिर बाद में
वो तो भगवान की बात है, वो बात भगवान की है। काशी जी बात पूछी थी वो मैंने कही है, और भगवान की बात तो भाई सबसे निराली है, वहाँ से ही अलग।
आप बता रहे थे,
मैं तो एक बात बता रहा था, कुछ संकोच हो जाता है मन में, लोग उनका उल्टा आसन लगा ले। जिनको रुपयों की गरज है, रुपया मिले, भेंट आ जाए, सदर मिल जाए, हमारा भी कोई चेला बन जाए, ऐसा जिसका भाव होता है वो तो चेला दास होता है, गुरु नहीं होता। रुपया चाहता है वो रुपया दास है, मान चाहता है वो मान दास है, बढ़ाई चाहता है वो कीर्ति दास है। जी मैं कहता हूँ वो तो ये बात कहता हूँ कि रुपया चलने वाला तो रुपये वाला का पोता चेला है, गुरु कैसे हुआ? रुपये जिसके हैं वो है रुपयों का मालिक, तो रुपया तो हुआ उनका चेला, और रुपयों का मालिक है गुरु, और रुपयों का चेला दूसरा तो पोता चेला हुआ। तो जिसके मन में रुपयों की आशा है। मन की चाहना ये वास्तव में है चीज। दादी मूस गोत मुनाये गए भया जो गोत्रम घोट, अरे मन को क्यों नहीं मुंडिया जिसमें भरिया खोट। भीतर खोट भरी हुई भाई उसको मन करो। सर्गो ये शाम सामने स्थित माना, जिन पुरुषों ने अपने मन को जीत लिया है यही थे सर्ग। संसार पर वो विजय कर गए। जितन जगत के न मनो ही ये न, जिसने मन पर विजय कर ली उसने जगत पर विजय कर ली। और मन और इंद्रियों के गुलाम है वो चाहे कुछ भी करे भाई जन्म मन में जाना पड़ेगा। क्यों मन गुलाम है इंद्रियों के गुलाम है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों के मान बढ़ाई और आलस्य के प्रमाद के गुलाम है। उसकी मुक्ति कैसे हो जाएगी? तमाशा नहीं है ऐसे किसी को गुरु बना दिया हो जाए ये बात नहीं। नारायण 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 नारायण। कोई साधु पूछते हैं श्लोक मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमोसिना मत्सानि सर्वभूतानि नताम से स्वस्थित न मत्सानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम भूत भृन्नत भूतस्तो मात्मा भूत भावना। कहते इसका मर्म क्या है? इन श्लोकों में गूढ़ रहस्य क्या है और मार्मिक बात क्या है? ये चौथा और पांचवा श्लोक है नौवें अध्याय का। नौवां अध्याय है बीच में नौवां दसवां दो अध्याय गीता के मध्य भाग के हैं। इसमें बहुत रहस्य भरा है। अब इनको राज विद्या कहा है। विद्याओं की राजा है ये, ऐसी विद्या कही है। भगवान पहले कहते आए हैं सातवें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान की बात कहने के लिए उपक्रम किया, परंतु आठवें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिए, उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आठवां अध्याय पूरा हुआ। फिर नौवां अध्याय भगवान ने शुरू किया, सातवां अध्याय अर्जुन ने नहीं पूछा भगवान ने शुरू किया है। ऐसे नौवां अध्याय भी भगवान ने शुरू किया, अर्जुन का प्रश्न नहीं है। उसमें विकार मैं विज्ञान से ज्ञान कहूंगा। इदंतुते गुह्यतमं प्रवक्ष्या मनु सूर्ये ज्ञानं विज्ञान सहितं साधु ज्ञानं ते हम सविज्ञानं इदं वक्ष्यामि अशेषतः। और यहाँ भी ज्ञान से विज्ञान वो प्रगण दूर होने से उसके साथ एक मिलाने के लिए भगवान ने नौवें अध्याय में फिर विज्ञान से ज्ञान कहने की बात कही। विज्ञान से ज्ञान की बात कह करके एक बहुत विलक्षण बात कही। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र निर्मोत्तम प्रत्यक्षाम सुसुगम कर्तुम अव्ययम। इसमें आठ बातें कही, आठ। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम और अव्ययम, ये सात बातें बताई। सात बातें बता करके एक बहुत विलक्षण बात बताई, कर्तुम सुसुखम करने बड़ी सुख है, करने में सुगम है। तो आठ बातें कही, एक सुगमता की सात उसकी विशेष हुई है। आठ बातें तो विद्याओं की राजा है, संपूर्ण जितने विद्या संसार में है संपूर्ण विद्याओं की राजा है, इससे ऊपर कोई विद्या नहीं है। ब्रह्म विद्या राम योग शास्त्र कैसे गीता में इस विद्या अध्यात्म विद्या विद्या नाम संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या स्वरूप होगी। तो राज विद्या है ये, विद्याओं की राजा है। राजगुह्यम गुप्त रखने लायक बातें जितनी गए गोपनीय बढ़िया बढ़िया रहस्य की उन बातों में भी ये श्रेष्ठ है। राजगुह्यम का तात्पर्य गुप्त रखने का, गुप्त रखने में राजा का तात्पर्य क्या है, धन की लोग गुप्त रखते हैं, हीरा पन्ना गुप्त रखते हैं, अपनी विद्याओं को गुप्त रखते हैं, कई तरह के मंत्र तंत्रों को गुप्त रखते हैं, ज्योतिष विद्या को गुप्त रखते हैं। जहाँ तक कहा है कि ज्योतिषी गारूड़ी विद्या पिछला पुत्र होना चाहिए, ज्योतिषी और गोरख गारूड़ी विद्या ऐसी मंत्रों की विद्या है तो बाप तो बेटे को नहीं सिखाता, ऐसी तो गुप्त रखते है। ऐसे गुप्त रखने की बहुत सी बातें है। राजगुरु जी का तात्पर्य ये गुप्त रखने में तात्पर्य नहीं है, मानो ये बहुत दुर्लभ चीज है, जल्दी मिलती नहीं है, क्योंकि बिना पात्र के कोई ग्रहण कर नहीं सकता। दो तरफ गुप्त रखने का दो तार तात्पर्य होता है कि दूधे जान न जाए, कहीं और को कहीं मिलने जाए, गुप्त रखो, ऐसे गुप्त रखते है। एक ऐसी है कि बहुत ही बढ़िया चीज है, कोई लेने वाला हो तो दिया जाए, तो लेने वाले मिलते कम हैं, इस बात के उन्मुख सम्मुख कम होते हैं, पात्र कम होते हैं, इस वास्ते मुक्त है। ये नहीं है कि भाई दूसरे को हम नहीं बताएंगे, भगवान कह दे कि हम तो किसी को भी बताएंगे बिहारी को, ऐसी बात नहीं है। तो गुप्त की मतलब बहुत रहस्य की बात है, गंभीर बात है, गहरी बात है, महान कल्याण करने वाली बात है, इस वास्ते ये राजगुही है। इससे बढ़कर गोपनीय है कोई बात नहीं। रहस्य हेतु जो उत्तम, ये चौथा अध्याय का रहस्य हेतु उत्तम, उत्तम रहस्यम, उत्तम रहस्य की बात है ये। तो ऐसे उत्तम रहस्य की बात कब योग की बात बताई, या इसको कहते हैं ब्रह्म विद्या को, राज विद्या को, सात विशेष और पवित्र है ये, महान पवित्र है, इसके समान कोई पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञाने न शरीरम पवित्र में विद्यते, इसके समान कोई पवित्र चीज नहीं, सबसे पवित्र है। उत्तम श्रेष्ठ बोले जाए, कीमती समझे जाए तो इसे सबसे उत्तम है, पवित्र समझे जाए तो पवित्र, उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ समझे जाए तो ऐसी ये उत्तम है। और ये प्रत्यक्षावगम, इसका प्रत्यक्ष फल है, ऐसे नहीं कि अभी करो समय पाकर इसका फल मिलेगा, ऐसी नहीं, इसका प्रत्यक्ष फल है। और धर्म धर्मादान के तुम धर्म के सही थे, और बताया अविनाशी है ये, मिल गया तो मिल गई, तो मिल ही गई सजा के लिए, फिर इसमें कमी नहीं आती, विनाश नहीं होता। ऐसी बात होने पर भी सुसुखम कर तुम, करने में बड़ी सुकून होती है, सुखम ने सुसुखम कर तुम, अत्यंत सुखपूर्वक किया जा सकती, ऐसी है ये इसकी महिमा गई है। फिर बात आती है, ऐसी बढ़िया बात है तो वे सब लोग क्यों नहीं ले देते, सबको क्यों नहीं मिल जाती, सब पास क्यों नहीं हो जाती। कहते अस्त तथा पुरुषा धर्म से परम धर्म, अस्त धर्म से अस्त तथा श्रद्धा नहीं करती, विश्वास नहीं करती। यह जगह जगह भटका, जगह जगह ठोकरे खाई, जगह जगह इसको दुख मिला, इस बात की ये विश्वास नहीं करता। जैसे कहावत है कि दूध का जरा छास को फूके, जरा दूध से और छास में भी फूक मारेगी, अरे भाई ये ठंडी है। तो इस तरह से सब जगह उसकी ऐसी बात हो गई, अच्छी जगह कहीं मिलेगी इसका पता नहीं है। और पता न होकर के मन इतना भ्रमित हो गया, किसी पर विश्वास नहीं करता, कहीं पर टिकता नहीं। और धोखा भी बहुत खाया ही है, अनंत जन्म में धोखा खाते आए, और इस जन्म में भी न जाने कितनी बार कहां कहां धोखा खाया है, अविश्वास विश्वास नहीं करती। अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम है, परंतु जल्दी जल्दी विश्वास नहीं होता। तो एक तो बहुत जगह धोखे खाया, इस वास्ते विश्वास नहीं होता। एक जो अंतकरण महान मलिन है, उस मलिनता के कारण से इसके सम्मुख नहीं होते, ये अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। तुलसी पूरे पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए, बुखार आ जाता है जोर से तो भूख नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं लगता, अन्न की गंध आती है। जिस अन्न से पला है, बना है, पला है, बड़ा हुआ है, वो अन्न अच्छा नहीं लगता। ऐसे अंतकरण की मलिनता का अर्थ नहीं होता। कहते हैं पापी से पापी को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मना किसी के लिए नहीं है, वे सन्मुख होते नहीं। नहीं तो अभी से सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग, पापी से पापी, दुराचार से दुराचारी, जैसे इसको सुसुकुम कर तुम बताया, ऐसे अभी से सुदुराचारो बताया, दुराचार में सु लगाया, यही सुखम सुसुकुम लगाया। तो दुराचारी भी सर्वोपांग दुराचारी, जिसमें कोई दुराचार बाकी बस नहीं गया, ऐसा दुराचारी वो भी अन्य भाव से हो जाए तो उसको साधु ही मानना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि दुराचारी से दुराचारी भी सन्मुख हो सकता है। अभिचेद जी पापी भी सर्वे भी पाप कृतम, भक्ति के लिए भी अभिषेक सुंदर आचार्य बताया, और तत्व ज्ञान जो परमात्मा प्राप्ति का साक्षात साधन है, और आज ज्ञान की बहुत महिमा है, उस ज्ञान के लिए भी भगवान कहते हैं अभिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य, पापेभ्य और फिर सर्वेभ्य, पापेभ्य में सर्वशब्द पड़ा है, और फिर पाप कृतम बताया, पाप कृत, पाप कृतर और पाप कृतम, व्याकरण में जितने प्रत्यय लगाने से लगा इसे, अधिक से अधिक बात बताए। ऐसा पापी है, ज्ञान प्रवेण ज्ञान की नौका से विद्रम संतरी शेष संपूर्ण पापों को तर जाएगा, और तर जाने पर समुद्र रह जाते हैं कि नहीं, यदि भान से समृद्धोग्र भस्म सात कुर्ते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात, जैसे दहकती हुई बड़ी आग हो वो जैसे लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि अनंत पापों का नाश कर देती है। इसमें बराबर नहीं देखा जाता, जैसे एक बिहार सराई से शेर भर, एक जैसा शेर भर ऊन शेर पर रुई वो जल जाती है, तो मन भर के लिए 40 सराई चाहिए, एक बिहार सराई 100 मन हो, कचे 1000 मन हो, एक जैसा सराई काफी है। ऐसे भाई ज्ञान कितना अज्ञान है, कितना पाप है, कितने दोष है, ये माप तोल नहीं होता है। अनंत वर्षों का, लाखों वर्षों का जिस पहाड़ की गुफा में अंधेरा है, प्रकाश करते ही अंधेरा भाग जाता है। ऐसे नहीं भाई, लाख वर्षों का अंधेरा है तो एक दो चार दिन तो उसे दूर होते होते लगेगा, ऐसी बात नहीं। तत्काल ऐसे ही महाराज अनंत पाप हो भक्ति के लिए और ज्ञान के लिए और कर्म योग, तीन ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, योगाश्रयों में आप लोग था, इन तीनों योगों के लिए ऐसी बात आई है। वो उपाय है गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थे से यज्ञ आचरता कर्म समग्र से भगवान के लिए किया जाए, यज्ञ के लिए किया जाए, दुनिया के लिए किया कर, तो सब कर्म लीन हो जाते हैं। तो कर्म योग से भी संपूर्ण की कर्म लीन हो जाते हैं, भक्ति योग से भी कर्म लीन हो जाते हैं, और ज्ञान योग से भी सब कर्म लीन हो जाते हैं। योग होना चाहिए, ज्ञान भक्ति कर्म अलग है, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग अलग है, साथ में योग लग जाता है तो किसा ही कोई योग लगा दो, योग मान भगवान का संबंध, इससे सब पाप दूर हो जाते हैं। योग कई तरह के होते हैं, गीता में भी योग के कई अर्थ आए हैं, परंतु गीता खास योग किसको कहती है तो समत्वम योग उच्चते, गीता की परिभाषा में ये योग है। तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग, दो जगह गीता में योग का वर्णन है, योग की संज्ञा दो जगह की है भगवान ने, एक तो समत्वम योग से 48वां श्लोक है, दूसरा जाएगा, और ये सत्रह जगह 23वां श्लोक है उसमें योग की परिभाषा की है। तो दो जगह गीता ने अपने योग की परिभाषा की है और योगों का वर्णन गीता में कही है, उसका विवेचन अपने गीता दर्पण में किया है कि योग का क्या अर्थ है, कहाँ कहाँ योग किस अर्थ में आया है, इसके कितने अर्थ होते हैं, उसमें विस्तार से वर्णन किया। तो ऐसा योग है ये, तो यहाँ योग का खास अर्थ क्या है, खास भगवान का संबंध है, ये सबसे ऊंचा योग है और सबसे सुगम योग है, सबसे ऊंचा है सबसे सुगम, जो भी महिमा कहा है कि सबसे सुगम कैसे है, क्यों है, थोड़ी कृपा कर आप देखें। भगवान कहते हैं ननैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मेरा ही अंश है, ममांश नहीं, ममैवांश मेरा ही अंश है, बिल्कुल किसी का ही संबंध से नहीं, केवल केवल मेरा अंश। तो केवल परमात्मा का अंश होने से परमात्मा के साथ योग स्वतः सिद्ध है। अब ये सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, क्यों भगवान के साथ संबंध जीव का स्वतः सिद्ध है, परमात्मा का ही साथ साथ अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, वो स्वामी जी महाराज ने कहा है। तो फिर परमात्मा का साथ साथ अंश है, तो परमात्मा का अंश है इस वास्ते सुगम है, जैसे बालक होता है उसके लिए माँ की गोद में कुछ जाने से कोई फीस देनी पड़ती है, कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ अच्छा बनना पड़ता है, माँ अगर दूर रखे तो वो बच्चे के समझ में बात नहीं आती, कादे में मेले में भरा हुआ है, माँ हाथ पकड़ के अलग रखती है, अगर माँ ध्यान नहीं रखे तो वो तो रेशमी साड़ी में जाकर बैठ जाए, समझे, मेले में भरा है, बालक उसे याद नहीं है, और माँ की गोद में तो हक लगता है अपना, माँ देखती है कि मैल लगा हुआ है, मैला लगा हुआ है, कादा लगा हुआ है, और बच्चे को देखते ही ऐसे ही सज्जनों, अगर आप हम भाई बहन जितने गए, अगर ये विचार करे भगवान हमारी माँ है, बोलते तो है तमेव माता पिता तमेव बोलते, माँ भगवान है भाई, माँ भगवान है, पर जैसे बच्चे का माँ पर विश्वास होता है, ऐसा अगर हम सर मान ले तो बस माँ की गोदी में जा बैठे, अब साफ करना हो तो भगवान को करना पड़ेगा, वो बात कही है कि माँ में कम शरण मिले अहम पास्तरो पापे के मोक्ष, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तो ये माँ साफ कर देगी आपसे, आप हमारे उस साफ नहीं करना पड़ेगा, परंतु कम से कम गोद में तो जा बैठे, तो मन में जो अश्रद्धाना का तात्पर्य श्रद्धा नहीं कर रहे, माँ तो मेरी है, आप कृपा करके ध्यान दे, एक बात बताता हूँ खास, जो मैंने बताई है वही बताता हूँ साहब, आप दूसरी वस्तु को तो सुगम समझते, भगवान की बात कठिन समझते, अरे भगवान की बात जितनी सुगम है दूसरी बात अपने सुगम हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं होना संभव भी नहीं है, अपनी माँ जितनी सुलभ है बच्चे के लिए ऐसी सुलभ कोई वस्तु है, माँ खुद गर्ज करती है, खुद गर्ज करती है, खुद ऐसे भगवान को खुद को गर्ज है, भगवान प्रेम के भाव के भूखे, भाव का भूखा हूँ मैं, मुझ भाव ही दिनसार है, अरे परमात्मा भाव के भूखे है, तो ये प्रेम भाव की भूख भगवान को है, देखो शरण में जाना काम तो है भगत का, और सब तरह से पालन करना पापों से दूर कर देना है काम भगवान का, तो प्रेम करना दोनों को काम है, जिसे भगवान का प्रेम तो स्वतः है संपूर्ण जीवन में, कहते हैं सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति निश्चिति, प्राणी मात्र का मैं सूर्य हूँ उसमें सब आ गए, पापी से पापी दुराचारी दुराशी नारकी जीव सब सबो हम सर्वभूत, तो सब मेरे को सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे प्यारे हैं, मात्र प्राण का स्वरूप हूँ मैं परम स्वरूप, बिना कारण बिना हेतु स्वतः कृपा करे वो स्वरूप होता है, ऐसे भगवान कृपा करते और कृपा में विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं, ऐसे भगवान कृपा दो, ऐसी अपार कृपा रखने वाले भगवान है, ये केवल दूसरों के साथ संबंध होता है, सज्जनों ध्यान देकर आप लोग सुने, आप अपने शरीर के साथ रुपयों के साथ कुटुंबियों के साथ मान के साथ बड़ाई के साथ आराम के साथ आलस के साथ संबंध होते हैं, और ये संबंध रहेगा नहीं, सुख संबंध है नहीं आपका उनके साथ, और भगवान का संबंध आप चाहे जैसे हजारों लाखों वर्षों का अंधेरा, ऐसे लाखों जन्मों का अंधेरा भगवान से विमुखता बन सन्मुख हो जीव मोही, जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब ही, और क्या देरी लगे, तो दूसरी चीजों के सन्मुख बनाए यही सज्जनों बाजल, चेतन महान परमात्मा चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप उससे विमुख होकर जग चीजें नित्य स्वरूप परमात्मा से विमुख होकर जानते हो कि नाशवान चीजें सही रहेगा नहीं, कुटुंब रहेगा नहीं, धन रहेगा नहीं, और ये पदार्थ रहेंगे नहीं, घर रहेगा नहीं, और रहना तो दूर रहा, याद नहीं रहेगा, सुपना सो हो जाओ से खुद कुटुम्ब धन धाम ये सपना से हो जाएगा। स्वप्न के याद तो रहे, याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहे। ये क्या पता, बताओ इस धर्म से पहले कहाँ थे, कौन कुटुम्बी थे, कौन देश था, कौन सा घर था, कितनी संपत्ति थी, सुख था दुख था, याद है आज? अगर याद रहने की रीति होती तो आज याद रहता, और आज याद नहीं रहता तो फिर याद रहेगा? 5 दिन पहले क्या भोजन किया था याद है? कोई बता सकता है? याद नहीं रहता। तो अभी जितने प्यारे प्यारे संबंधी थे याद तक नहीं रहेंगे, अपना तो रहेगी क्या, याद ही नहीं। केवल 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 बस हाँ हाँ कर संबंध होता है। ऐसे पदार्थों के साथ तो संबंध जोड़ते हैं, रुपये में लगे रुपये जोड़ते हैं, कुटुम्ब को पालन करते हैं, सबसे स्नेह करते हैं, पर तो याद तो नहीं रहेगा। सज्जनों थोड़ा सा ध्यान दो, जानते हैं नाशवान, संयोग वियोगांता, जितने संयोग है वे वियोग होने वाले हैं, वियुक्त होने वाले, अलग होने वाले, उनका वियोग होने वाला है, उनको तो अपना मानते हैं। और कभी वियोग हुआ नहीं, कभी वियोग है नहीं, कभी वियोग होगा नहीं, कभी भगवान से वियोग तो हो सकता नहीं कोई। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में परमात्मा विराजमान है, उसका कहीं कभी किंचित मात्र भी अभाव हो नहीं सकता। वो भाव रूप से प्रत्यक्ष परमात्मा, वो परमात्मा है, उसको मानते नहीं। प्रत्यक्ष आपका बाबू, फल भी प्रत्यक्ष, स्वरूप भी प्रत्यक्ष, बिल्कुल। तो इसको जो नहीं मानते हैं, इसका नाम अश्रद्धा था ना। सच्ची बात को नहीं मानते, ये अश्रद्धा था ना। दूसरा आप इतने बैठे हैं, कृपा कर कोई भी बता दे क्या इन पदार्थों के साथ, शरीरों के साथ, कुटुंबियों के साथ, रुपयों के साथ, घर के साथ संबंध रहने वाला है? हृदय से ठीक समझ कर बताओ क्या ये संबंध पहले था और अब भी संबंध है क्या? ध्यान देकर सुने, मन में तो रहता है कि हम इतने वर्षों से जी रहे हैं, इतने वर्षों से हम साथ हैं। सज्जनों बिल्कुल झूठी भावना है, अंधेरे में है, अंधेरे में आपके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपकी जितनी उम्र आई है, इतने जी गए कि मर गए, बुरा न माने, सच्ची बात है, ध्यान देकर सुने। बहन है गम जी गए, इतने संबंध है, इतने संबंध है, इतने आपका वियोग हो गया, जितने वर्षों का शरीर हुआ है उतने वर्ष इस शरीर के साथ वियोग हो गया, कुटुंब के साथ वियोग हो गया, धन के साथ वियोग हो गया, जमीन के साथ वियोग हो गया, अपनी अपनी कहने वाली वस्तु के साथ में वियोग हो गया। हो गया नहीं है, हो रहा है बड़ी तेजी से। आप हम यहाँ आकर बैठे, उस समय जितनी हमारी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। आप कुछ काम करें न करें, परंतु आपका वियोग तो निरंतर हो रहा है, जैसे नदी का वेग जा रहा है, ऐसे आपके जीने का समय बड़ी जोरों से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अभाव में। इसका भाव रूप जो संबंध मानते हो, अभाव में जा रहा है, जा रहा, नष्ट हो रहा। थोड़ा ध्यान दो, प्रत्यक्ष दिखे, कि इतनी उम्र आ गई हम जी गए, नहीं नहीं इतने तो मर गए, बाकी कितना है इसका पता नहीं, पर मर गए इसका पता पूरा है। किसी को नहीं हो तो बताओ भाई, जितनी उम्र आ गई उतनी उम्र कम हो गई कि नहीं, उतनी मौत नजदीक आ गई कि नहीं, हृदय पर हाथ रखे सच्चे हृदय से बताओ ये बात झूठी है कि सच्ची है। अगर असत्य हो तो कोई भाई खड़ा हो जाए, कोई बहन कह दे, निरंतर जिस संसार का वियोग हो रहा है, शरीर का वियोग हो रहा है, उनको तो अपना मानते हैं, और भगवान का वियोग कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, संभव नहीं आपसे अलग भगवान हो जाए, और आपकी ताकत नहीं आप भगवान से अलग हो जाओ। बात तो छोटे मुंह बड़ी है, पर तो भगवान की ताकत नहीं हमारे छोड़ के अलग हो जाए। सर्वसमर्थ परमात्मा, अनंत सामर्थ्य परमात्मा में है, परंतु हमारे से अलग होने की सामर्थ्य भगवान में नहीं है। बताओ आप पढ़े लिखे हो, समझे हो, पढ़े हो, बताओ सत्य से बताओ, क्या भगवान हमारे से अलग हो सकते हैं? हमारे से भगवान अलग हो जाए तो हम एक और भगवान हो जाएंगे, हम भगवान दो हो जाएंगे। वो परमात्मा हो ही नहीं सकते जो किसी से अलग हो सके। एकांश से नष्ट हो जाए जगत संपूर्ण है, एक अंश विष्णुद्यामिदं कृष्णं एकांश से न, संपूर्ण जगत को एक अंश में है। विराट रूप दिखाया, विराट बड़ा भारी, वो भी भगवान कहते हैं। ये एक स्तंभ जगत कृष्ण, या तो एक जगह संपूर्ण जगत, संपूर्ण संपूर्ण जगत, ये एक स्तंभ जो घोड़े आंक रहे हैं, चाबुक लिए बैठे हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए, वे कहते हैं वो छोटा सा शरीर है, यहाँ एक स्तंभ, इस शरीर की एक जगह जगत कृष्ण, संपूर्ण जगत देख रहे थे। संजय ने यही कहा, भगवान ने कहा एक स्तंभ संजय तत्र एक स्तंभ जगत कृष्ण, अपश्चित देव देवेशी शरीर है। अर्जुन कहते पश्यामि देवांश तव देव देहे, आपको देख मैं देखता हूँ, तो अर्जुन के वचनों में भी भगवान के एक देश में संसार विराट, भगवान के वचनों में भी एक देश में विराट, संजय के वचनों में भी एक देश में विराट, अपार समझो विराट रूप है अनंत युग में, अर्जुन भी भयभीत हो जाते हैं। इतना विराट बड़ा विचित्र, और अर्जुन के लिए भय न सब व्यम, तब भगवान ने समाप्त किया, नहीं तो जाने अगर घबराता नहीं तो न जाने विघटन कितना दिखाते भगवान, गीता देखने से मालूम होता है दिखाते ही चले गए। इतना सब बड़ा विराट, परंतु एक एक शरीर है, ये दसवें अध्याय के अंत में कहता है, अथमा बहु नहीं थे न किंग्या थे, अरे बहुत सी बातें होती है, क्या मतलब विष्णु ब्याह एकांश है न कृष्ण विष्णु विष्णु ब्याह, हमसे तो संपूर्ण संसार को किसी एक अंश से प्राप्त कर से तो हूँ। अर्जुन पूछा केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान में आ, किस किस भाव में मेरे चिंतन करेंगे, कहाँ चिंतन करेगा, सब मेरी एक अंश में, ऐसे अपार परमात्मा वे कह रहे मया तत्व सर्वम जगत अभ्यक्त मूर्ति न, मैं निराकार स्वरूप से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वो परमात्मा तत्व वो बताते हैं, इसका रहस्य क्या है, परमात्मा अपना स्वरूप बता रहे हैं, सब जितना संसार है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, जैसे तारांतरगते भानु ये सूक्ष्म दृश्यते रज षष्ठ तमो भाग परमाणु विद्युत, कमार बंद होता है उसमें कोई छेद होता है, उस छेद में होकर सूर्य की किरण आती है तो वो अंधेरे में डंडे की तरह दिखती है ऐसी, उसमें बारीक बारीक कण घूमते हैं, उन बारीक कण के 60वां भाग का नाम है परमाणु। ऐसे परमाणु रूप से अनंत ब्रह्मांड भगवान के एक रूप को मैं एक अंश संसार मया तत्व इदम सर्वम, जो आप देखते हो इदम सर्वम मया तत्व, यहाँ भगवान कहते हैं तो मया तत्व का और परोक्ष रीति से कहते हैं ये न सर्वम इदम तत्व, दूसरे अध्याय ये न सर्वम इदम तत्व, आठवें अध्याय में ये सर्वम विदं ततम और मया तदमिदं सर्वम, सब मेरे से व्याप्त है। कितनी विश्वास है, तो ये बात क्या कह रहे हैं भैया, मेरे में सब व्याप्त, मया तदमिदं सर्वम, जगत अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त स्वरूप मूर्ति शब्द कहा और अव्यक्त कहा, मूर्ति अव्यक्त नहीं होती, मूर्ति होती है व्यक्त, तो वो समय मूर्त द्रव्य है वो अमूर्त द्रव्य है, तो मैं अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त स्वरूप से मैं शब्द गिरता हूँ, मूर्ति का मैं स्वरूप और मत्स्यानी स्वरूप भूतानी, अनंत प्राणी है, अनंत लोग है, उनमें जितने रहे वे सब के सब मेरे में से थे, मया तदमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति न, और मत्स्यानी सर्वभूतानी, जितने प्राणी हो सकते हैं वे सब के सब प्राणी मत्स्यानी मेरे में से थे। दो बात बताए, अब आप दूसरी बताई, तीसरी चौथी, चार बात बताई इसमें, इन श्लोकों में क्या बताया, चार बात बताई। एक तो ये कि संपूर्ण प्राणी मेरे में है, सब प्राणियों में मैं हूँ, अनंत लोकों में अनंत ब्रह्मांडों में मैं हूँ और अनंत ब्रह्मांड मेरे में है, और मैं तो मत्स्यानि भूतानि, अब दोनों का खंडन करते हैं आप इससे, मेरे में कोई प्राणी नहीं, मेरे में स्थित है ही नहीं, न चाह तेज हो गए उनमें मैं स्थित नहीं हूँ, दोनों को विरुद्ध बात किया, न चमत्सानी भूतानी का मतलब मेरे में भूत स्थित नहीं है, मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि नचाहं तेषु अवस्थितः, न च मत्सानि भूतानि, ध्यान देगा ये स्था धातु को तीन लिंग प्रयोग किया भगवान, मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि नचाहं तेषु अवस्थितः न च मत्सानि भूतानि, अपनी स्थिति बताई, पहले मैं तो बताया कि मैं व्यापक हूँ, अव्यक्त मूर्ति से, अरे भूत है उनकी स्थिति किसमें है, कि मेरे में है, अरे मेरे में नहीं है, मानो मेरे में प्राणी नहीं है पर वो स्थिति मेरे को छोड़ कर नहीं है, उनकी स्वतंत्र स्थिति कहीं नहीं, मेरे प्राणी स्थित नहीं, न तो मत्सान न चाहे तुम तेसु अवस्थित है, उनमें अवस्थित मैं भी हूँ, तो बात तात्पर्य क्या निकला, मानो प्राणी है ये अगर स्थित होते हैं तो जीते तो मेरे में ही है, पर मेरे में प्राणी नहीं है, मैं प्राणियों में नहीं हूँ और मेरे में प्राणी नहीं है। आकाश में जैसे बादल होता है, वो बादल अगर कहे, आकाश कहे बादलों को कि सब बादल मेरे में है और सब बादलों में मैं हूँ, ठीक बात है। परंतु आकाश कहता मेरे में बदल नहीं है, तो आकाश में बदल तो नहीं है। आकाश में अगर बदल होते तो बदल स्थित रहते, आकाश रहता तब तक रहते। क्यों आकाश में स्थित है तो आकाश रहेगा तो बदल भी रहेगा, परंतु आकाश तो रहता बदल रहते नहीं। ऐसे प्राणी तो रहते नहीं, मैं रहता हूँ अरे मैं रहता हूँ, वो प्राणी रहते ही नहीं तो प्राणियों में मैं कैसे हूँ। जब बदल रहते ही नहीं तो उस समय बदलों में कहा हूँ, पर बदलों की सत्ता आप समझते हो उस समय में बदलों में मैं हूँ और मेरे में बदल है। परंतु ये सब संसार बदल है, सब छिन्न भिन्न होने वाले मिटने वाले हैं, मैं रहने वाला हूँ। पूछते कि इसका गूढ़ क्या रहस्य है, गूढ़ रहस्य क्या मार्मिक रास्ता है, मार्मिक गूढ़ रहस्य मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ केवल मतलब मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मेरे सिवाय कोई कारण नहीं है, कोई कार्य नहीं है, सब मैं ही मैं हूँ, सभी वासुदेव सर्वम। ये भगवान ने महात्माओं की ऊंची स्थिति बताई 7वें अध्याय 19वें श्लोक में। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदेव। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा ज्ञानवान मेरे शरण होता ज्ञानी तो आत्मे वसम। तो सिवाय परमात्म तत्व के और तत्व नहीं है, तत्व मैं ही। ये संसार और शरीर दिखते जितने ये सब आगुन तो बनने बिरने वाले मिटने वाले हैं। गूढ़ रहस्य भगवान अपने आप को बताते हैं। व्यापक तो मैं हूँ निराकार रूप से, परंतु हूँ मैं ही, इसका तात्पर्य क्या? वो व्यापक रूप मेरा है, वही साकार रूप से मैं हूँ। निराकार साकार मेरे में फर्क नहीं है, नहीं है। नहीं सर्विदम तो तुम सूत्रे मणिगण आये हुआ, जैसे मणिगण एक सूत में पुरोए हुए हैं, सूत का ही मणका हो सूत का ही धागा हो तो सूत में ही पुरोए हुए मन के हैं, सूत में ही है, वास्तव में सूत ही है। ऐसे मेरे में संसारे सब कुछ मैं ही हूँ। जब तक राग द्वेष है, कोई अच्छी लगती है कोई बुरी लगती है, तब तक परमात्मा नहीं दिखते। इंद्रिय से इंद्रियार से राग द्वेषो व्यवस्थित हो, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर इस व्यवस्था को लेकर व्यवस्थित है राग द्वेष, ये जब तक रहते हैं तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होते। अपने राग द्वेष सामने खड़े कर दे का तो राग करेगा द्वेष करेगा, अब भगवान दोनों से अतीत है। जिसमें आजकल तो भी एक बहुत विलक्षण बात है, राग द्वेष तो रहते हैं अंदर भी मिलती नहीं, ये तो रहेंगे तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। गीता के सिद्धांत के अनुसार जब तक राग द्वेष रहे परमात्मा प्राप्ति नहीं, परिहस्य परिपंथी हो, ये दोनों ही मार्ग में लुटे रहे, परिपंथी है शत्रु है। और ये मिट जाए तो परमात्मा साफ नहीं लग जाए, तो बात क्या हुआ, परमात्मा में आग किसने लगाई, हमारे राग द्वेष ने। जैसे घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न वर्कम, सूर्य ढक गया एक बदल से, कहते सूर्य ढक गया, अरे पृथ्वी से भी बड़ा बताते हैं परिमाण जिसका, वो सूर्य एक बादल के टुकड़े से ढक गया, बादल नहीं ढक गया है और सूर्य नहीं ढक गया है, अपनी आंख ढक गई। ऐसे हमारे राग द्वेष ने हमें उधर देखने नहीं दिया है, परमात्मा नहीं ढके गए हैं, परमात्मा है जो, सूर्य सदा है जो का तू है, अपनी आंखें ढक गई। ऐसे अपने बुद्धि का अंधेरा आ गया, वो कहने का राग द्वेष बस। अगर राग द्वेष का त्याग कर दे तो परमात्मा दर्शन हो जाए। एक और बात बताई, ये अगर चाय चाय करके सत्य हृदय से भगवान के शरण चले जाए तो इनको राग द्वेष भगवान मिटा दे, सब उस राग द्वेष को मिटाने के लिए योग, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, साधन है। कर्म योग बड़ा सीधा साधन, राग द्वेष चलती मिटता, निर्द्वंद्व ही महाभव सुखम बंधात्व मिच्छति। पांचवे अध्याय के आरंभ में संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसी, कर्मों के संन्यास को भी आप कहते हैं, कर्म कर्म के योग को भी कहते हैं, यस्य एति योगिकं, दोनों में एक कल्याणकार वो बात कही है, निश्चित कल्याण हो। भगवान कहते एक क्या कहें, संन्यास कर्मयोग निश्रेष करो उभौ, दोनों कल्याण करने वाले हैं, दोनों कल्याण करने वाले। अब वो रहस्य बताते हैं, गूढ़ रहस्य, अब क्या मिशन करें भाई, समय हो गया, महाराज घड़ी दिखाते तो ऐसा है वो रहस्य, तो परमात्मा ही परमात्मा है। खास रहस्य बताना है भगवान ने, अपने आप को प्रकट करना है। जहाँ जहाँ रहस्य की बात, गुप्त बात बताई है, वहाँ भगवान ने अपना रहस्य बताने की बात बताई है, गीता में ढूंढ लेना। नारायण नारायण नारायण।